धवला पुस्तक तेरावी लेक्चर नंबर 3 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धे ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूम् सयलोवसद्गणिवः संवरणेनेव जस्स फिट्टन्ति पाशस्सतस्सणमिम् आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और वर्गणा खंड का स्पर्श अनुयोग द्वार हम देख रहे हैं, और ये 13वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 पर हम आ गए हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं, ये स्पर्श में भी 16 अनुयोग द्वार बताए थे, 2 नंबर के पेज पर लिखे थे। जैसे हमने वेदना में देखे थे 16, वैसे यहाँ पर भी, जैसे स्पर्श निक्षेप स्पर्श ने विभाषण था वो हमने वेदना में देखे थे, वेदना निक्षेप वेदना ने विभाषण था, ऐसे ये सब 16 अनुयोग द्वार यहाँ बताए हैं। उसके बाद एक एक अनुयोग द्वार लेते हुए निक्षेप नए इसका स्वरूप बताते बताते त्वक त्व यानी त्वचा। हाँ पेज नंबर हमारा
26
है।
हमने शुरू किया है प्रवचन,
अभी हम बाद में बोलेंगे, 26 नंबर का पेज है। तो यहाँ जो हमने स्पर्श निक्षेप नए विभाषणता वगैरह ये 16 अनुयोग द्वार 2 नंबर के पेज पर बताए, फिर निक्षेपों के नाम 3 नंबर के पेज पर बताए थे कि 13 प्रकार का स्पर्श निक्षेप है, नाम स्थापना वगैरह वगैरह सब। अब उसकी उसको समझाने के पहले उन्होंने नए की बात की, कौन से नए से कौन सा विषय होता है वगैरह, क्योंकि नए के साथ उसकी बात की। फिर बाद में उन्होंने फिर वो निक्षेपों को समझाने की वर्गणा में भी अभी ये स्पर्श कर्म और प्रकृति ऐसे 3 अधिकार है वर्गणा खंड में। हाँ तो उसकी बात अभी चलेगी, तो उसमें से स्पर्श की बात यहाँ देखो देखो कौन से द्रव्य के द्वारा स्पर्श किया जाता है, किसका स्पर्श, उसके अनुसार इसकी हाँ वो 6 द्रव्यों की आपस में भी बातें बताई थी उन्होंने। देखो पेज नंबर 1 नंबर का पेज निकालो, लास्ट वो विशेषार्थ लिखा है ना, कृति वेदना आदि 24 अनुयोग द्वारों का नाम निर्देश बताया। तो हमने कृति देखी वेदना देखा, अब ये स्पर्श का प्रकरण चलेगा। अब ये स्पर्श की बात यानी बहुत विस्तार से सभी बातें बताई उन्होंने, 13 प्रकार के स्पर्श बता दिए उन्होंने, और उसमें से यहाँ कौन सा स्पर्श है ये पूछ रहे हैं। तो कहते उसमें से ये कर्म स्पर्श यानी वो कर्म स्पर्श की बात यहाँ चल रही है, अभी 13 हुए नहीं हमारे, कर्म स्पर्श की जो कहते उसको, इसको कितना नंबर दिया था हमने, 10वां नंबर का है, 13 में से ये 10वां है। पेज 3 पर जो अनेक नाम दिए हैं 13, उसमें से ये 10वां नंबर का है निक्षेप, उसका नाम ही कर्म स्पर्श है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो सो कम्मो फासो 26 नंबर के पृष्ठ पर। अब कर्म स्पर्श का अधिकार है, इसका अर्थ कहते हैं सो अठवी हो नाना वर्णीय दंसना वर्णीय वेयनीय मोहनीय आऊ नामा गोद अंतराय कम्म फासो सो सवो कम्म फासो नामा। वह आठ प्रकार का यानी कर्म स्पर्श आठ प्रकार का है, ज्ञानावरणीय कर्म स्पर्श, दर्शनावरणीय कर्म स्पर्श, वेदनीय कर्म स्पर्श, मोहनीय कर्म स्पर्श, आयु कर्म स्पर्श, नाम कर्म स्पर्श, गोत्र कर्म स्पर्श और अंतराय कर्म स्पर्श, वह सब कर्म स्पर्श है। अब ये कर्म स्पर्श ने किसके साथ स्पर्श हो रहा है उसकी बात बता रहे हैं। आठ कर्मों का जीव के साथ विसरसोपचयों के साथ, हमने देखा जीव से बंधा हुआ है यानी वो कर्म स्पर्श हुआ है, और एक एक कर्म परमाणु के साथ अनंत अनंत विसरसोपचय के परमाणु होते हैं उसके साथ भी उसका स्पर्श है, और नौ कर्मों के साथ यानी कर्म का शरीर के साथ स्पर्श है कि नहीं है उसके कॉन्टैक्ट है ना, वो तीनों जीव भी है वहाँ, कर्म भी और नौ कर्म भी उसी क्षेत्र में है। तो ये कर्मों का स्पर्श जीव के साथ भी है, विसरसोपचयों के साथ भी है और नौ कर्मों के साथ भी है। जो स्पर्श होता है वह द्रव्य स्पर्श में अंतर्भूत होता है, इसलिए वह यहाँ नहीं कहा गया है, किंतु यानी वो तो हो ही गया है, परंतु वो द्रव्य स्पर्श में हमने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ जो है उसकी बात वहाँ बताई है, तो कर्म स्पर्श में और एडिशनल क्या बताएंगे। किंतु कर्मों का कर्मों के साथ जो स्पर्श होता है, ज्ञानावरण का ज्ञानावरण के साथ, ज्ञानावरण का दर्शनावरण के साथ, ज्ञानावरण का अंतर है, ये सभी सभी के साथ, एक एक का अन्य सभी के साथ, यानी आठ कर्म है तो हर एक का आठ के साथ, यानी स्व के साथ भी और पर के साथ भी, इस तरह से। तो कर्मों का कर्मों के साथ जो स्पर्श होता है वह कर्म स्पर्श है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए।
यह अंतर्वर्त क्यों बताया,
क्या क्या
ये द्रव्य स्पर्श से,
द्रव्य स्पर्श हाँ
में अंतर्मूर्त होता है,
अंतर्मूर्त नहीं अंतर्भूत यानी इंक्लूडेड,
अंतर्भूत सॉरी मैं अंतर्मूर्त पढ़ता माँ है हमारे में
अंतर्मुह है वो अंतर्भूत हाँ। है पर मुहूर्त लिखा है क्या,
अंतर्मूर्त है
मुहूर्त लिखा है, ओ माय गुडनेस
वो भर रह गए
वो लिखा है मध्य बीच में
ऐसे
मुहूर्त में हु लिखता है ना बीच में मुहूर्त ऐसा लिखा है
नहीं 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 मुंह ऊपर रफा है
तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त अंतर्मूत ऐसा हुआ है ना अंतर्भूत चाहिए अंतर्भूत होने उसमें इंक्लूड हो जाना यानी भ नहीं आया है
इससे क्यों हो गया अंतर्मूत करके बताए
अच्छा किया पूछा आपने
पूछ लिया वो अच्छा किया
यानी यहाँ कर्म स्पर्श में क्या लेना कर्म का स्पर्श कर्म के साथ स्पर्श होना वो कर्म स्पर्श है। अब स्पर्श के भंगों का कथन करते हैं यानी कर्म स्पर्श कर्म का कर्म के साथ स्पर्श उसके भंग यानी उसके कॉम्बिनेशंस बताएंगे यानी ज्ञानावरण का ज्ञानावरण के साथ ज्ञानावरण का दर्शनवरण के साथ इस तरह से हर एक के साथ बताएंगे तो ये सब भंग बताएंगे। यथा ज्ञानावरणीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है पेज नंबर 26 ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है यानी किसके द्वारा स्पर्श किया जाता है इस तरह से ज्ञानावरणीय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है ज्ञानावरणीय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है ज्ञानावरणीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है ज्ञानावरणीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है ज्ञानावरणीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है और ज्ञानावरणीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार आठ हो गए नहीं ज्ञानावरणीय कर्म के आठ भंग होते हैं ऐसे दर्शनावरण के भी आठ लगाएंगे पर हम ज्ञानावरण दर्शनावरण का है वो दर्शनावरण ज्ञानावरण का वही भंग है बाद में पुनरुक्त कहकर उसको निकालेंगे अभी तो हर एक के आठड़ बताएंगे। अभी हम आते हैं 27 पृष्ठ पर, नया पैराग्राफ। दर्शनावरणीय, दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। दर्शनावरणीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। दर्शनावरणीय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। दर्शनावरणीय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। दर्शनावरणीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है। दर्शनावरणीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है। दर्शनावरणीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। दर्शनावरणीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के 8 भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 8 भंगों में मिलाने पर 16 भंग होते हैं। अभी आसान है ना, अर्घ के साथ आठ लगाएंगे इस तरह से।
ये ज्ञानावरणी का दर्शनावरणी के साथ हो गया तो दर्शनावरणी के ज्ञानावरणी का साथ अलग
वो बाद में उसको पुनरुक्त कहकर निकालेंगे। पहले उसको एक एक कितने भंग होते हैं ऐसे अलग अलग बताएंगे। टोटल बताना है तो ये पुनरुक्त है कहकर उसको निकालेंगे। जैसे ए का बी के साथ और बी का एक साथ ए के साथ सेम है। अब वेदनीय, वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। पहले उसको स्व को बताए, फिर ज्ञानावरण की बात देखेंगे। वेदनीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। वेदनीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। वो श के ऊपर रफार नहीं आया, ब्रह्मा पुराने पुस्तक में दर्शनावरणीय करो बराबर। नीचे के लाइन में भी श के ऊपर रफार नहीं है। वेदनीय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। वेदनीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है, यहाँ पर भी श के ऊपर रफार चाहिए। वेदनीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है। वेदनीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। वेदनीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार वेदनीय कर्म के 8 भंग होते हैं। एक एक के 8 भंग हमको सेपरेट लेना है तो एक एक के 8 है, पर उसमें जो रिपीटेड है वो बाद में उनको निकाल देंगे। इन्हें पूर्वोक्त 16 भंगों में मिलाने पर 24 भंग होते हैं। तो मेरा प्रश्न है टोटल कितने हो गए इसे?
हाँ, प्रत्येक
64 है ना, 8 के 8 है, 8 × 8 64 हो जाएंगे। पुनरुक्त निकालना पड़ेगा, कितने हो गए?
8 − 1 नहीं, 8 − 1 करके उसका संकलन निकालना। नहीं, 1 मिनट।
देखो जो ज्ञानावरण के आगे के साथ प्रत्येक के साथ निकाले ना,
तो पहले 8, 7, 6, 5, 4, 3
नहीं, देखो ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण का आगे के साथ लिया, यानी ज्ञानावरण के 7 भंग है। नेक्स्ट दूसरों के साथ वही फिर दोबारा रिपीट होने वाले।
दर्शनावरणी के
सात का संकलन धन निकालना,
28
वाला होगा। सात का संकलन धन 28 होता है,
56 का आता है।
अभी देखेंगे यहाँ क्या कहते हैं। हाँ, तो वेदनीय के 8 मिलकर 24 हो गए। अभी तो आसान है ना, अभी हमको केवल पढ़ना है, समझ में आती है ना बात। मोहनीय का पहले मोहनीय के साथ बताएंगे, फिर मोहनीय का ज्ञानावरण दर्शनावरण इस तरह से। वेदनीय मोहनीय, मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। मोहनीय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। मोहनीय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। मोहनीय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। मोहनीय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है। मोहनीय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है। मोहनीय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। मोहनीय अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार मोहनीय कर्म के 8 भंग, भ के ऊपर बिंदी देना, भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 24 भंगों में मिलाने पर 32 भंग होते हैं। अभी तो 4 ही कर्मों की बात देखिए। अब 28 नंबर के पृष्ठ पर आना। आयु, आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है। आयु ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। आयु दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। आयु वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। आयु मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। आयु नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है। आयु गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। आयु अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार आयु कर्म के 8 भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 32 भंगों में मिलाने पर 40 भंग होते हैं। अब नाम की बात है। नाम नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है। नाम ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। नाम दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। नाम वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। नाम मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। नाम आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है। नाम गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। नाम अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार नाम कर्म के 8 भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 40 भंगों में मिलाने पर 48 भंग होते हैं। यहाँ केवल द्विसंयोग ही लिए हैं। हाँ। गोत्र गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। गोत्र ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। गोत्र दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। गोत्र वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। गोत्र मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। गोत्र आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है। गोत्र नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है। गोत्र अंतराय द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार गोत्र कर्म के 8 भंग होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त 48 भंगों में मिलाने पर 56 भंग होते हैं। अब अंतराय अंतराय के द्वारा स्पर्श किया जाता है। अंतराय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श हुआ, स्पर्श लिखो बराबर। पुराने पुस्तकों में करेक्शन है। अब 29 पेज पर आते हैं। पहला अंतराय का अंतराय के साथ है। अंतराय ज्ञानावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। अंतराय दर्शनावरणीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। अंतराय वेदनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। अंतराय मोहनीय द्वारा स्पर्श किया जाता है। अंतराय आयु द्वारा स्पर्श किया जाता है। अंतराय नाम द्वारा स्पर्श किया जाता है। और अंतराय गोत्र द्वारा स्पर्श किया जाता है। इस प्रकार अंतराय कर्म के 8 भंग होते हैं। उन्हें पूर्वोक्त 56 भंगों में मिलाने पर 64 भंग होते। देखो ये अंतराय के जो है ना, अंतराय का अंतराय के साथ छोड़ो, बाकी जो है उसके साथ वो सारे पुनरुक्त है। अंतराय के लिए 7 पुनरुक्त है, उल्टे करो। गोत्र के लिए 6 पुनरुक्त होगी। इस तरह से एक तक आना। दर्शनावरण के लिए 1 पुनरुक्त है, तो 1+2+3 7 तक है। इसलिए फिर से पुनरुक्त करते रिपीट है। देखो ऐसा नहीं है, ज्ञानावरण का दर्शनावरण के साथ बताया था, फिर दर्शनावरण में फिर दर्शनावरण का ज्ञानावरण के साथ बताया, बात वही होगी ना। ए का बी साथ करो, बी का ए के साथ को, बात वही की वही है, इसलिए उसको रिपीटेड है। तो हमने अंतराय में लास्ट वाला है 8वां, तो उसमें तो 7 तो रिपीटेड आ गए। केवल उसका स्व के साथ है, वो हर एक का अपने अपने साथ है, जो अपना अपना है वो तो अलग रखो, और बाकी सब जो है तो उसको कैसे निकलते हैं हम। टोटल आप निकाल के बताएंगे द्विसंयोगी भंग कितने हो गए। 8 में द्विसंयोगी भंग कितने हो गए। तीन में द्विसंयोगी भंग कितने होते हैं। तीन एबीसी, तीन में एबीसी द्विसंयोगी, एक का बी के साथ, एक का सी के साथ, बी का सी,
तीन तीन
टोटल 7 होते हैं। ये सिंगल द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी, हमें केवल 2 संयोगी चाहिए। द्विसंयोगी 3, 4 हो गए, तो द्विसंयोगी कितने हो गए। देखो कैसे निकालना, जितने हैं ना उसमें एक कम करो,
3 का संकलन,
3 हो गए, 3 का संकलन धन 1+2+3 कितना होता है 6, तो उसमें 6 हो जाए। इसका एक के साथ, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, फिर इसका इसके, इसका इसके, फिर इसका इसके साथ 6 हो गए ना। अभी हमारे पास कितने कर्म है, 8 है।
8 माइनस 1 7,
7 का संकलन 28 आता है, तो द्विसंयोगी 28 आना चाहिए, द्विसंयोगी। परंतु यहाँ कितने आएंगे, अपुनरुक्त कितने आने चाहिए।
यहाँ पे मेरे आगे पढ़ लिया, अपुनरुक्त 36 बताए,
36 क्यों? क्योंकि ज्ञानावन का ज्ञानावन के साथ, दर्शनावन का दर्शनावन के साथ, अपने स्व के साथ, उसके 8 लेना चाहिए ना, हर एक का अपने अपने साथ,
28 प्लस 8,
उसमें 8 मिला दो 36 हो जाएगी और 28 पुनरुक्त हो जाएगी।
28 पुनरुक्त हो जाएगी।
अगर कहीं पर भी अगर हमको द्विसंयोगी केवल निकालने होते, द्विसंयोगी निकालने का तरीका क्या है? गच्छ माइनस एक का एक बार संकलन, द्विसंयोगी भंग, टोटल द्विसंयोगी
दो बार संकलन निकालना पड़ेगा। तीन
को क्यों कह रहे हैं?
तीन त्रिसंयोगी का,
त्रिसंयोगी लेना ही नहीं हमको यहाँ पर, यहाँ बस द्विसंयोगी की बात है, तीन का संयोग यहाँ कुछ बात ही नहीं है। हमारे यहाँ विषय तीन संयोगी वाला नहीं है, वो तो अक्षरों में तीन संयोगी चार संयोगी वहां करते, यहाँ नहीं करना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने यहाँ तक देखा ना, 29 पेज पर आए थे, तो 64 भंग होते, यहाँ तक समझ में आई बात? अब यहाँ एक से लेकर एकोत्तर यानी एक एक बढ़ते हुए, एक से लेकर एक बड़ा यानी एक दो तीन चार, इस तरह से 7 गच्छ के संकलन प्रमाण पुनरुक्त भंगों के घटा देने पर। ये एक कैसा आया? दर्शनावरण का एक पुनरुक्त है, ज्ञान दर्शन और वेदनी के दो पुनरुक्त है ना, इस तरह से 7 तक पुनरुक्त हो गए। तो 7 का संकलन देना 28 होता है, 28 पुनरुक्त हो जाएंगे, 64 में से 28 उन्होंने घटाए। तो देखे एक से लेकर एकोत्तर 7 गच्छ के संकलन प्रमाण पुनरुक्त भंगों के घटा देने पर अपुनरुक्त 36 भंग होते हैं। तो मैंने जो बात मेथड बताई वो उन्होंने नहीं बताई है, मैंने तो इस तरह से बताई है, 8 है उसके द्विसंयोगी भंग 28 ही होते हैं, परंतु ज्ञानावरण का ज्ञानावरण के साथ, दर्शनावरण का दर्शनावरण, ये हम स्व के साथ जो 8 है वो भी ऐड करने पड़ेंगे, तो 28 और 8 36 हो जाएंगे। दोनों ओर से हमने उसको देख लिया। अब इसी का विशेषांक, कर्म स्पर्श में न तो कर्मों का जीव के साथ होने वाला स्पर्श लिया गया है, तो वो तो द्रव्य स्पर्श में लिया था, और न कर्मों का उनके विसरसोपचयों के साथ होने वाला स्पर्श लिया गया है, और न कर्मों का, नो कर्मों के ऊपर बराबर मात्रा देना, क के ऊपर साथ होने वाला स्पर्श लिया गया है। तो क्या लिया है? यहाँ केवल 8 कर्मों का परस्पर में जो स्पर्श होता है उसी का ग्रहण किया गया है। कर्म स्पर्श का अर्थ है कर्मों का परस्पर में होने वाला स्पर्श। इस अर्थ के अनुसार कर्म स्पर्श के कुल भंग 64 होते हैं, उनमें से पुनरुक्त 28 भंग घटा देने पर अपुनरुक्त भंग कुल 36 रहते हैं। खुलासा इस प्रकार है। अब यहाँ उन्होंने क्रमांक लिखा है 1 से 12, फिर 13 से 24, यानी दो कॉलम बताए हैं, तो 1 से 12 ऐसे ऊपर से नीचे तक पढ़ना। देखो ज्ञानावरण के जो सारे हैं वो अपुनरुक्त ही लिए हैं, फिर दर्शनावरण का दर्शनावरण तो अनुपुनरुक्त है ही है, उसके बाद दर्शनावरण का ज्ञानावरण के साथ है वो पुनरुक्त, पू यानी पुनरुक्त, और 2 से यानी ऊपर जो 2 नंबर का था वहां पर ये 10 नंबर पर ये पुनरुक्त आ गया। दर्शनावरण के बाकी के जो है वो अपुनरुक्त रहेंगे, जहाँ अ लिखा है। अब 17 नंबर देखो, वेदनी का वेदनी के साथ अपुनरुक्त है, पर वेदनी का ज्ञानावरण के साथ था वो 3 नंबर पर था, वेदनीय का दर्शनावरण का था वो दर्शनावरण में लिया था हमने 11 नंबर पर, और बाकी रिमेनिंग उसके अपुनरुक्त, यानी दर्शनावरण में 1 पुनरुक्त हुआ, वेदनीय में 2 हो गए। अब मोहनीय में 3 कहेंगे, तो मोहनीय का मोहनीय के साथ तो अपुनरुक्त है, पर मोहनीय का ज्ञानावरण के साथ जो हमने ज्ञानावरण में मोहनीय के साथ लिया था 4 नंबर का, दर्शनावरण का मोहनी के साथ लिया था 12 नंबर पर, और मोहनी का वेदनी के साथ लिया था 20 नंबर पर, वो सारे पुनरुक्त हो गए, बाकी आगे वाले अपुनरुक्त कहलाएंगे। फिर आयु का आयु के साथ अपुनरुक्त, यानी देखो दर्शनावरण में 1 पुनरुक्त था, वेदनी में 2 पुनरुक्त, मोहनी में 3 पुनरुक्त, आयु में 4 पुनरुक्त है ना, जो ज्ञानावरण के साथ आ गए थे दर्शन, उसके पूर्व कर्मों के साथ जो अल्टा आया था वही वो पुनरुक्त कहेंगे। फिर नाम की देखो बात, नाम का नाम के साथ और पुनरुक्त है, परंतु नाम का ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु के साथ जो है वो सारे पुनरुक्त हो गए, यानी नाम के लिए 5 पुनरुक्त हो जाएंगे। नाम के नेक्स्ट बाद में आने वाले गोत्र और अंतराय को अपुनरुक्त कहेंगे। गोत्र का गोत्र तो अपुनरुक्त है, पर गोत्र के पूर्व के साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु और नाम के साथ वो सारे पुनरुक्त कहेंगे, यानी ये 6 हो गए।
अंतराय के साथ
उसके बाद आने वाले अंतराय के साथ अपुनरुक्त है, फिर अंतराय का अंतराय के साथ वो तो अपुनरुक्त है, और बाकी सारे ही पुनरुक्त। यानी हमने देखो दर्शनावरण में 1, वेदनीय में 2, मोहनीय में 3, आयु में 4, नाम में 5, गोत्र में 6 और अंतराय में 7, तो 7 का संकलन धन 28 पुनरुक्त है, तो 64 में से 28 माइनस कर दिए। अब यहाँ तक तो कर्म स्पर्श की बात हो गई। अब 30 हाँ ना हाँ अब 30 नंबर के पेज पर जो ऊपर का सूत्र पढ़ेंगे, जो सो बंध फासो नामा, ये निक्षेप के प्रकरण में ये बंध स्पर्श 11 नंबर पर था ना, कितना नंबर था अभी हमने कौन सा देखा था,
10
का देखा था ना,
अभी 11 हो गया,
अभी 11वां 11वें नंबर का निक्षेप देख, उसका नाम है बंध स्पर्श। नीचे देखते हैं, अब बंध स्पर्श का अधिकार है उसका अर्थ कहते हैं, पढ़ा ना जो सो बंध फासुना पढ़ा था,
या तो ये 2 कर्मों का स्पर्श लिया, 2 का ही आपस में स्पर्श लिया, तो 8 का एक दिक के साथ स्पर्श नहीं होता है,
हो ही है ना, अभी हरेक का हरेक के साथ 64 भंगों में सब आ गए, 64 भंगों में सभी आ गए ना, नहीं समझे,
नहीं समझा नहीं
अभी हरक का हरेक के साथ संबंध बताया है,
अच्छा अच्छा उसमें सभी आ गए,
सभी आ गए ना उसके अंदर, हाँ हाँ अभी 28 सूत्र, सो पंचवी हो, यानी बंध स्पर्श 5 प्रकार का है, ओरालीय शरीर बंध फासो एवं वेयुवीय आहार तेया कम्मय शरीर बंध फासो सो सवो बंध फासो नामा। अब ये नीचे वह 5 प्रकार का है, जो बंध स्पर्श है वो 5 प्रकार का है, औदारिक शरीर बंध स्पर्श इसी प्रकार, वैक्रिक आहार तेजस और कार्मण शरीर बंध स्पर्श वह सब बंध स्पर्श है। अभी शरीर का शरीर के साथ की बात चल रही है यहाँ पर, जो बांधता है वह बंध कहलाता है, औदारिक शरीर ही बंध, औदारिक शरीर बंध है, उस बंध का स्पर्श औदारिक शरीर बंध स्पर्श है, इसी प्रकार सब शरीर बंध स्पर्शों का भी कथन करना चाहिए। अब शंकाकार पूछते हैं, कर्म स्पर्श और नो कर्म स्पर्श द्रव्य स्पर्श में अंतर्भाव को प्राप्त होते हैं, फिर इनका अलग से कथन क्यों किया गया है? अभी जो कर्म स्पर्श को भी बताया था कि कर्म का जीव के साथ, कर्म का कर्म के साथ, कर्म का नो कर्म के साथ, सब द्रव्य स्पर्श में आ जाता है, फिर भी वहां 8 का अलग से कथन किया था। अब यहाँ कहते हैं नो कर्म स्पर्श भी उसमें आ गया था द्रव्य स्पर्श में, तो इन दोनों का ही अलग से क्यों कथन कर रहे, ये प्रश्न है। समाधान, कर्मों का कर्मों के साथ, नो कर्मों का नो कर्मों के साथ और नो कर्मों का कर्मों के साथ स्पर्श होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए इनका अलग से कथन किया गया है, यानी प्रत्येक का अपने अपने साथ और पर के साथ इस तरह से लेना, कर्म का कर्म के साथ, नो कर्म का नो कर्म के साथ और नौकर्म का कर्म के साथ, इसलिए कर्म स्पर्श अलग लिया, नौकर्म स्पर्श अलग लिया, यानी वो आपस में तो द्रव्य स्पर्श में आ गया, पर उनका अपने साथ जो होता है इसलिए कर्म स्पर्श भी अलग, और इसके भी कॉम्बिनेशन बताना चाहिए, अभी शरीर के एक शरीर के दूसरे शरीर के साथ कौन कौन से शरीर एक साथ होते हैं उनको कहेंगे अभी यहाँ पर। शंका, कर्म स्पर्श बंध स्पर्श में अंतर्भाव को प्राप्त होता है, फिर उसका पृथक से कथन क्यों किया गया है, यानी वो भी बंध ही है ना, तो इसका फिर से दोबारा क्यों किया। उसका समाधान, कर्म बंध स्पर्श, नो कर्म बंध स्पर्श का कारण है। क्या कहा? यानी कर्म जो है, कर्म के उदय के कारण ये तो नो कर्म आता है, इसलिए कर्म बंध स्पर्श कारण है, नो कर्म बंध स्पर्श का वो कारण है। यह जतलाने के लिए उसका अलग से कथन किया गया है। अब यहाँ बंध स्पर्श के भंग बतलाते, आठ कर्मों में जैसे हमने भंग देखे हैं, अभी पांचों शरीर में भंग बताएंगे, एक शरीर का साथ हर एक 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 के साथ भंग बताएंगे, औदारिक का औदारिक के साथ, औदारिक का वैकृत के साथ, औदारिक का हरक के साथ, औदारिक का तेजस के साथ, औदारिक का कारमान के साथ, फिर वैकृत का और सबके साथ बताएंगे इस तरह से। कौन से दो एक साथ नहीं हो गए? वैकृत और
आहारक साथ में नहीं
होगा, नहीं होगी, पर आहारक नहीं होगी, वैकृत
और
आहारक
साथ में नहीं,
क्योंकि आहारक रिद्धि है तभी वैक्रिया शरीर नहीं बनाता इस तरह से। वैकृत औदारिक इसलिए लेते हैं क्योंकि औदारिक की भी विक्रिया करते हैं ना, हाँ, इसलिए वो वैकृत शरीर लेना। देखो अब यहाँ बंध स्पर्श के भंग बतलाते हैं, यथा औदारिक शरीर नो कर्म प्रदेश, अब वो किसके होते वो भी बताएंगे। तीरियंच और मनुष्यों में औदारिक शरीर नो कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, यानी औदारिक का औदारिक के साथ किस में होगा तो तीरियंच और मनुष्यों में, इतनी बात बतानी। औदारिक शरीर नो कर्म प्रदेश तीरियंच और मनुष्यों में वैकृत शरीर नो कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। मनुष्य और तीरियंच जो औदारिक शरीर वाले वो विक्रिया करते हैं उसको वैकृत शरीर कहेंगे, तो उस औदारिक का वैकृत के साथ संबंध बताएंगे। नो कर्म ने शरीर के परमाणु को नो कर्म कहते, देख कर्म ने आठ कर्म, नो कर्म ने शरीर, औदारिक शरीर नो कर्म प्रदेश प्रमत्त संयुक्त गुण स्थान में आहारक शरीर नो कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, औदारिक और आहारक। औदारिक शरीर नो कर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में तेजस शरीर नो कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। तेजस शरीर तो सबके होता है ना, वो तो बाहर निकलता है, उसकी बात नहीं है। तेजस और कारमान शरीर तो है ही है कायम। औदारिक शरीर नो कर्म प्रदेश तीर्यंच और मनुष्यों में कारमन शरीर के प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। इस प्रकार औदारिक शरीर के पांच भंग होते हैं। वो किसमें होते हैं कहने के लिए बीच में उन्होंने मनुष्य तीर्यंचों की बात उठाई। अब वैकृत शरीर के भंग बताएंगे। वैकृत शरीर नो कर्म प्रदेश देव और नारकियों में वैकृत शरीर नो कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते। वैकृत का वैकृत के साथ भंग, वो तो देव नारकी में ही होगा। वैकृत शरीर नो कर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में औदारिक शरीर नो कर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, यानी वैकृत का औदारिक के साथ तिर्यंच मनुष्यों में होगा। हाँ वो सेम हो जाएगा, मनुष्य तिर्यंचों में पुनरुक्त होगा। वैकृत शरीर नो कर्म प्रदेशों का प्रमत्त संयत गुण स्थान में आहारक शरीर नो कर्म प्रदेशों के साथ स्पर्श नहीं है, नहीं है लिखा देखो, क्योंकि अनिमा आदि लब्धियों से संपन्न, ये अनिमा रिद्धि वगैरह प्राप्त होते हैं ना, लब्धि कहो रिद्धि कहो, उनके जिनकी प्राप्त होती है, तो इन्हें वैकृत रिद्धि जिनके प्राप्त है वो विक्रिया से शरीर बनाते हैं प्रमत्त संयत मुनिराज रिद्धि के बल से। परंतु जब जिस समय आहारक बना रहे उस समय वैकृत नहीं होता, वो आहारक में वापस आने के बाद विक्रिया कर सकते फिर। तो कहते अनिमा आदि लब्धियों से संपन्न प्रमत्त संयत जीव के विक्रिया करते समय आहारक शरीर की उत्पत्ति संभव नहीं है, या तो विक्रिया करेंगे वैकृत शरीर से और या तो आहारक शरीर बनाएंगे, तो इसलिए नहीं कहे वैकृत का आहारक के साथ स्पर्श नहीं है। अब वैकृत शरीर नो कर्म प्रदेश चारों गतियों में तेजस शरीर नोकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। ये जो विक्रिया से मनुष्य तीरियंज बनाएंगे या देव अपना अपना विक्रिय शरीर बनाएंगे उसमें तो तेजस शरीर तो है ही है, विक्रिया ये जो शरीर बनाए नया उसमें भी तेजस कारमान तो है नहीं, वो तो सर्वत्र पड़े, आत्म प्रदेश उसमें भी है, तो वहाँ कर्मान और तेजस भी है वहाँ पर। फिर वैक्रिक शरीर नौ कर्म प्रदेश चारों गतियों में कर्मान शरीर प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। द्वारा बराबर लिखो, द्वारा हुआ ब हुआ है, द करना व करना, यानी वैक्रिक में एक वैक्रिक आहारक वाला भंग नहीं, बाकी चार भंग है। इस प्रकार वैक्रिक शरीर के चार भंग होते हैं, फिर इन्हें पूर्वोक्त पांच भंगों में मिला देने पर नौ भंग होते हैं। अब आहारक के भी विक्रिया के साथ नहीं होगा,
तीन भंग
उसके भी
तीन भंग,
तीन कैसे चार हो गए ना,
आहारक
के साथ, आहारक का औदारिक के साथ, आहारक का तेजस और कर्मण के साथ है ना। अब आहारक शरीर नौ कर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुण स्थान में आहारक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। प्रदेश यानी वो परमाणु, आहार शरीर के परमाणु, एक परमाणु दूसरे के साथ उसका स्पर्श है। आहारक शरीर नौकर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुण स्थान में औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। फिर आहारक शरीर और वैक्रिक शरीर का परस्पर में स्पर्श नहीं होता, जैसे ऊपर देखा था नहीं होता है, क्योंकि आहारक शरीर के उत्थान काल में विक्रिया नहीं होती। जब विक्रिया शरीर की बात की थी तब विक्रिया के काल में आहारक शरीर की उत्पत्ति होती नहीं है, ऐसा कहा। आहारक की मुख्यता है तो आहारक के उत्थान काल में विक्रिया की उत्पत्ति नहीं होती, ऐसा कहा।
तो ये जो आहारक का जो औदारिक के साथ स्पर्श बता है वो खाली जहाँ से वो आहारक से निकलता है वो अपेक्षा से स्पर्श बता है।
हाँ देखो, जीव ने ही ग्रहण किए ना, औदारिक शरीर वाले ने, औदारिक शरीर के परमाणु तो थे ही थे वहाँ पर।
अच्छा,
उसने तो वो ग्रहण किए तो उसका स्पर्श भी होगा ना वहाँ पर उसका, फिर वो जाता है वगैरह वो बात बाद में होगी। शरीर बनाते समय तो उसने तो ग्रहण तो किए थे, है ना। हाँ, अब ये देख रहे पांचवी लाइन, आहारक शरीर नौकर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुण स्थान में तेजस शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, क्योंकि अनिसरणात्मक तेजस शरीर, अनिसरणात्मक है ना। देखो छठे की बात की है तो छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज वो तो शुभ तेजस और अशुभ तेजस शरीर भी होता है ना, तेजस जिसको हम विक्रिया करते हैं, तेजस समुद्घात जिसको कहेंगे, वो तेजस समुद्घात की बात नहीं है, क्योंकि जब तेजस समुद्घात करे तब आहारक नहीं बनाया है। तो कौन से तेजस के साथ उनका स्पर्श है, तो रेगुलर जो है जिसको हम अनिसरणात्मक कहते हैं, निस्सरण यानी बाहर निकलना, यानी समुद्घात होना, समुद्घात वाला तेजस नहीं लेना है, समुद्घात वाले तेजस की बात नहीं है पर, क्योंकि जब आहारक बना रहे उसी समय तेजस समुद्घात नहीं होगा। अनिसरणात्मक यानी बिना समुद्घात वाला, यानी रेगुलर जो सब जीवों के होता है, अनादि से हर एक का तेजस कर्मण होगा ना, कब तक होगा, चौदहवे के अंत तक होगा, उदय तेरहवे के अंत तक है, तेजस शरीर नाम कर्म का उदय तेरहवे के अंत तक। नए परमाणु तेजस के नहीं लेंगे, पर जो ऑलरेडी तेजस शरीर कर्मण शरीर बना है औदारिक शरीर, चौदहवे के अंतिम समय तक होगा वहां पर। तो इसको कहते अनिसरणात्मक, निसरणात्मक यानी शुभ शुभ तेजस शरीर, तेजस समुद्घात यानी बिना समुद्घात वाला रेगुलर जो तेजस शरीर कहेंगे। क्योंकि उसका सदाकाल सत्व पाया जाता है ना, यानी अनादि से चौदहवे के अंत तक सदाकाल उसका सत्व है, सत्ता है। आहारक शरीर नौकर्म प्रदेश प्रमत्त संयत जीवों में कर्मण शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, क्योंकि आठों कर्मों की प्रमत्त संयत जीवों के सदाकाल सत्ता पाई जाती है, उसके आठ कर्म है कि नहीं है। इस प्रकार आहारक शरीर के चार भंग होते हैं, इन्हें पहले के नौ भंगों में मिलाने पर तेरह भंग होते। देखो वैक्रिक के और आहारक के चार चार हुए, औदारिक के पांच हुए थे। अब 33 पेज पर अभी तेजस के और पांच कर्मण के अपने पांचों हो गए, क्योंकि जो कोई शरीर होगा तेजस भी होगा वहां, कर्मण भी होगा। तो तेजस शरीर वो शरीर हुआ है। इस वाक्य में दो बार शरीर लिखा है, वो शरीर लिखो बराबर। शो तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश चारों गतियों में, तेजस शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते, तेजस का तेजस के साथ, तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में, औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों के द्वारा स्पर्श किए जाते क्योंकि औदारिक शरीर तिर्यंच मनुष्यों के हैं, तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश देव और नारकियों में, वैकृत शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं।
ये तेजस शरीर का खाली देव और नारकियों बताया, वैकृत के साथ तो मनुष्य भी क्रिया करता है तभी भी देव,
अपन वो औदारिक के परमाणु ही है ना। तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश प्रमत्त संयत जीवों में, आहारक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। और पहले ऊपर वैक्रे मनुष्य तिर्यंचों में तो लिए थे ना, औदारिक के साथ ले ही लिए थे। ये चार हो गए। तेजस शरीर नौकर्म प्रदेश चारों गतियों में, कार्मन शरीर कर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते, यहाँ चारों गतियां ली। इस प्रकार तेजस शरीर के पांच भंग होते हैं, इन्हें पहले के 13 भंगों में मिलाने पर 18 भंग होते हैं। औदारिक के 5, वैक्रिक के 4, आहारक के 4 और तेजस के 5 हो गए। अभी अब कार्मान के भी 5 हो गए। कार्मन शरीर कर्म प्रदेश चारों गतियों में, कार्मन शरीर शर लिखो बराबर, करीर हुआ शरीर, कर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। कार्मन शरीर कर्म प्रदेश तिर्यंच और मनुष्यों में, औदारिक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। कार्मन शरीर कर्म प्रदेश देव और नारकियों में, वैकृत शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। फिर कार्मन शरीर कर्म प्रदेश प्रमत्त संयत गुणस्थान में, स के ऊपर बिंदी लगा लो, आहारक शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। और कार्मन शरीर कर्म प्रदेश चारों गतियों में, तेजस शरीर नौकर्म प्रदेशों द्वारा स्पर्श किए जाते हैं। इस प्रकार कार्मन शरीर के 5 भंग होते हैं, इन्हें पहले के 18 भंगों में मिलाने पर 23 भंग होते हैं। 18 और 5 23। इनमें अपुनरुक्त भंग 14 होते हैं और अवशेष 9 भंग पुनरुक्त होते हैं। क्योंकि मूल में ही उन्होंने देखो, मूल में 2 पुनरुक्त है, उसको तो वैकृत का आहारक, आहारक के वैकृत का तो होते ही नहीं। तो ऐसे अगर हम द्विसंयोगी भंग निकालेंगे तो कितने हो जाते
पुनरुक्त?
नहीं नहीं, पुनरुक्त हम बोलोगे सभी, यानी अपुनरुक्त ही निकालो। नहीं नहीं, द्विसंयोगी अपुनरुक्त निकालो,
द्विसंयोगी अपुनरुक्त।
हमने क्या फॉर्मूला बताया था?
5 और 5
में से एक कम कर दो,
5 और 20 और 4
का संकलन कितना होगा?
4 × 5/2
10 हो गए ना, 10 होगा। अभी 10 में उन्होंने क्या किया है, 10 होने चाहिए है ना, पर हर एक का अपना अपने साथ वो 5 और मिला जाएंगे, 15 वो हो जाएंगे, और 15 हो जाएगा। और फिर वैकृत आहारक के साथ नहीं होता है तो उसमें से इधर एक कोई ले लेंगे, वैकृत आहारक या आहार को एक कम कर दिया 15 में से, तो 14 हो गए। यहाँ क्या लिखा, इनमें अपुनरुक्त भंग 14 होते हैं और अवशेष 9 भंग पुनरुक्त होते हैं। मूल में उन्होंने 2 कम किए थे ना, देखो ऐसे अगर सब उनके हिसाब से निकालते तो क्या होता। हमने 8 के कितने निकाले पहले, 8 × 8 = 64, वैसे अगर वैकृत आहार का होता तो कितना निकलते, 5 × 5 = 25 तो हो जाते, पर 25 में तो 2 कम है, हाँ इसे 2 कम, 23 तो हुए थे, 23 हुए थे ना, तो 23 में से पुनरुक्त न हो लिए तो उसको निकाल दिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, 34 पेज पर आना। इस प्रकार कर्म और नो कर्म सन्निकर्ष का कथन किया। सन्निकर्ष यानी उसको किसका किसके साथ स्पर्श होता है। कर्म सन्निकर्ष का कथन तो पहले ही कराए हैं, क्योंकि कर्म का कर्म के साथ सारे हमने भंग देखे थे, इसलिए पुनरुक्त दोष के भय से उसका यहाँ पुनः कथन नहीं किया। इस प्रकार बंध स्पर्श का कथन समाप्त हुआ। बंध में फिर कर्म का कर्म के साथ वो फिर दोबारा ले सकते हैं, परंतु ये बता चुके अभी अभी। अब भव्य स्पर्श का अधिकार बताएंगे। जो सो भव्य फासुणाम, अब ये निक्षेप नंबर 12, वही पेज 3 से बात चली आई थी। तो कहते जो सो भव्य फासुणाम, अब भव्य स्पर्श का अधिकार है, स्प बराबर आया क्या, उसका अर्थ कहते हैं। जहां विषकूड जंत पंजर कंदय वग्गुरादीन कत्तारो समुद्धि दारो य भवियो फुसन दाये नोय पुन ताव तम फुसदी सो सवो भव्य फासो नाम। यथा विषकूट यंत्र पिंजरा कंदक और पशु को फंसाने का जाल आदि, तथा इनके करने वाले यानी वो जाल को बनाने वाले और इन्हें इच्छित स्थान में रखने वाले स्पर्शन के योग्य होंगे, परंतु अभी उन्हें स्पर्शन नहीं करते, तब वह सब भव्य स्पर्श है, करने वाले है। भव्य ने होने योग्य, भव्य का अर्थ कहता है होने योग्य, वो स्पर्श होने योग्य है, अभी हुआ नहीं है ये कह रहे। अभी उसका एक एक का अर्थ बताते हैं। विष सुप्रसिद्ध है, यानी जहर जिसको कहेंगे, कौवा और चूहा आदि के धरने के लिए जो बनाया जाता है उसे कूट कहते हैं, वो हम उसको पिंजरा कहते हैं, यहाँ तो अलग बताए पिंजरे को। जो सिंह और व्याघ्र आदि के धरने के लिए बनाया जाता है और जिसके भीतर बकरा रखा जाता है उसे यंत्र कहते हैं, क्योंकि वो अंतर घुसता है फिर उसको खाने लगता है तो वो बंद हो जाता है। तीतर और लाव आदि के पकड़ने के लिए जो अनेक छोटी छोटी पंचे लेकर बनाया जाता है उसे पिंजरा कहते हैं। हाथी के पकड़ने के लिए जो वारी बंद बनाया जाता है उसे कंदक कहते हैं, यानी वो वारी वारी यानी वो तो रस्से को जोड़कर कुछ बनाते होगे ना, खड्डा करके उसके ऊपर। अथवा हरिण और सुअर आदि के मारने के लिए जो फंदा तैयार किया जाता है उसे कंदक कहते हैं। मैंने तो टीवी पर उसको लिया था, वो गेंडा होता है ना एक सिंग वाला, उसको कैसे वो फंदा डालकर, फंदा नहीं उसके फांस होता है वो रस्सा में, और ये घोड़े के ऊपर बैठकर उसको ऐसा डाला जाता है, वो भागता है तो पकड़ के उसको फिर उसमें पुल करते थे तो उनको पकड़ते हैं। वग्गुरा प्रसिद्ध ही, मेरे ख्याल से वग्गुरा का अर्थ है वो पंछी पकड़ने के लिए जो कोई चिकना लगाते हैं वो इसके ऊपर, जरा जीवकांड निकालना उसमें कुछ बात लिखी है वहाँ पर, यानी जो मिथ्या ज्ञान के भेद है ना बिना पढ़ाए, इसके अंदर जीवकांड, जीवकांड की पहली पुस्तक मिथ्या ज्ञान के भेद में है वो। वो यू लिखा है ना, राइट से तीसरा होगा शायद, लब्धि सार के बाद जीवकांड है। हाँ मेरे पीछे लिखा है ना यू, हाँ जीवकांड है, मुझे अभी अभी रखा है ना, हमने अभी शिविर के लिए ले गए थे ना। ये मति ज्ञान में आया था, मिथ्या ज्ञान का विशेष लक्षण देखो यहाँ लिखा है ना, विसजंत कूड पंजर बंधादिशु विणुवेस करणे ना, यानी बिना उपदेश के जो इनमें बुद्धि चलती है ऐसा लिखा है। अब देखो यहाँ मैं टीका पढ़ती हूँ, वग्गुरा देखते हैं ना, पूरा ही पढ़ती हूँ। परस्पर वस्तु के संयोग से मानने की शक्ति जिसमें होती है ऐसी तेल कर्पूर आदि वस्तु से विष कहते हैं। व्याघ्र सिंह व्याघ्र आदि क्रूर जीवों को पकड़ने के लिए जिसके अंदर छैला ने बकरी आदि रखते हैं उसमें उस क्रूर जीव का पैर पड़ते ही किवाड़ बंद हो जाता है। ऐसी डोरी के कल से युक्त हो काष्ठादिक से रचा हुआ उसको यंत्र कहते हैं, जो अभी हमने देखा था। मछली कछुआ चूहा कोल इत्यादि जीवों के पकड़ने के लिए काष्ठादिकमय बनाया हुआ उसको कूट कहते हैं। कूट जो अभी हमने पढ़ा था। तीतर लवा हिरण आदि जीवों को पकड़ने के लिए फंद से युक्त डोरी का जाल बनाया हो उसे पिंजर कहते हैं। वो पिंजरा हमने ऐसा नहीं, वो पिंजर कहा था उसको। हाथी ऊंट आदि को पकड़ने के लिए गड्ढे के ऊपर गांठी के विशेष सहित जेवरा यानी रस्से की रचना रूप विशेष उसे बंद कहा उन्होंने। वहां उसको कहा था कंदक कहा उसको, यहाँ उन्होंने बंद कहा था कंदक कहा। आदि शब्द से पंखियों के पंख चिपकने के लिए ऊंचे दंड के ऊपर चिकटास लगाना चिकना रस या गोंद आदि उसे बंद कहते हैं, उसको भी बंद कहा। और हरणादिक के सिंह के अग्रभाग में सूत्र की गांठ देना फंदा लगाना इत्यादि विशेष जानने यही होना चाहिए उसी को उन्होंने चिकना रस वगैरह चिकटास लगाना वग्गुरा होगा वही उन्होंने तो वग्गुरा प्रसिद्ध ही है कहा यही होगा ना चिकना लगा कि उसमें वो चिकास में जो आके हम ये मच्छर के लिए भी देखते ना कहीं वो लगाते ना उसके ऊपर चिपक जाते हैं मच्छर वो बगुरा होगा शायद
वो, बड़े बड़े होते हैं।
वो तो लाइट के तरफ आते वो अलग है ये तो एक पहले के वो था अच्छा चिकनास
लेते चूहा के लिए अभी आता है ना
वो निकल नहीं सकता
वो चिपक जाते
वही होगा ये
वो सुबह
मरते ही है ना निकल नहीं सकते तो क्या देखो यह क्या कहते हैं इन द्रव्यों का रखना भव्य स्पर्श है क्योंकि जीव आके उसके साथ चिपक जाते हैं अटक जाते हैं बंद हो जाते हैं जो कुछ तथा इन यंत्रादि के करने वाले और उद्दीदारों ने इन यंत्रादि को इच्छित स्थान पर रखने वाले भी भव्य स्पर्श कहलाते हैं। अभी रखा नहीं पर रखेंगे क्योंकि यहाँ कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। यंत्रादि को स्पर्श संज्ञा किस निमित्त से प्राप्त होती है ऐसा पूछने पर कारण का कथन करने के लिए कहा है कि भवियो कुसण नाये नोय पुण तावतम भूसदी अर्थात जो स्पर्शन के योग्य तो है परंतु उस इच्छित वस्तु को स्पर्श नहीं करता उसकी भव्य स्पर्श संज्ञा है यानी होने वाला है बस। इस प्रकार भव्य स्पर्श का कथन समाप्त हुआ है। विशेषार्थ जो पर्याय भविष्य में होने वाली होती है उसे भव्य या भावी कहते हैं। यहाँ स्पर्श का प्रकरण है इसलिए भव्य स्पर्श का यह अर्थ होता है कि जो भविष्य में स्पर्श पर्याय से युक्त होगा वह भव्य स्पर्श है। इसके उदाहरण स्वरूप सूत्र में विषव यंत्रादिक पदार्थ लिए गए हैं। इन पदार्थों का निर्माण मुख्यतया अन्य जीवों को पकड़ने के लिए किया जाता है इसलिए इनकी भव्य स्पर्श संज्ञा होती है। शक के ऊपर रफार देना इसी प्रकार कारण में कार्य का उपचार करके इन विषादि के निर्माता और इन्हें इच्छित स्थान पर रखने वाले भी भव्य स्पर्श कहलाते हैं। द्रव्य निक्षेप में आगे होने वाली पर्याय और उसके कारण दोनों का ग्रहण होता है उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। जैसे द्रव्य निक्षेप में हम आगे पीछे वाली पर्याय को भी लेते हैं इसे यहाँ भव्य ने होने योग। अब 13 नंबर लास्ट अब भाव की बात है। जो सो भाव फासो नाम अब भाव स्पर्श का अधिकार है यानी निक्षेप नंबर 13 लास्ट वाला। इसका अर्थ कहते हैं वजुत्तो पाहुड़ जानवो सो सवो भाव फासो नाम जो स्पर्श प्रावृत का ज्ञाता उसमें उपयुक्त है वह सब भाव स्पर्श है हमने देखा ना पहले आगम और नो आगम के भेद से करते हैं, पहले हमने जाने थे प्रज्ञ निक्षेप लगाते तब, द्रव्य निक्षेप में उसका ज्ञाता परंतु उसमें उपयोग नहीं वाला लिया था, यहाँ वो द्रव्य स्पर्श में वो नहीं लिया, एक द्रव्य का दूसरे के साथ स्पर्श वो लिया था, और यहाँ भाव में क्या लेना भाव स्पर्श उसका ज्ञाता और उसी में उपयोग वाला, स्पर्श प्रावृत को वो को बराबर लिखो, जानकर जो उसमें उपयुक्त है जो उसकी का उपयोग उसी में चल रहा है वह सब भाव स्पर्श है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यह सूत्र देशामर्शक है क्योंकि वहाँ आगम भाव की बात की है, नो आगम भाव भी होगा कि नहीं, जो आगम की बात नहीं हो ऐसा नो आगम भाव, इसलिए जो आगम के बिना स्पर्श के उपयोग से युक्त है यानी स्पर्श का उपयोग जहाँ है, और जो जीव पुद्गल आदि द्रव्यों का ज्ञानादि भावों द्वारा स्पर्श होता है वह भाव स्पर्श है। नहीं समझे, केवल ज्ञान के द्वारा भाव स्पर्श गया पूरा लोकालोक है उसको भाव स्पर्श कहेंगे, ज्ञान के द्वारा जाना सब चीजों को, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। विशेषार्थ आगम और नो आगम भेद से भाव निक्षेप दो प्रकार का होता है, भाव स्पर्श में ये दोनों भेद विवक्षित है, जो स्पर्श प्रावृत का ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त होता है वह पहला भाव स्पर्श है, उस जीव को ही हम वो भाव निक्षेप की अपेक्षा उस जीव को ही स्पर्श कहेंगे, और जो स्पर्श प्रावृत का ज्ञाता नहीं भी है किंतु स्पर्श रूप उपयोग से युक्त है वह दूसरा भाव स्पर्श है, यानी स्पर्श उपयोग चल रहा है उसका, तथा जीव पुद्गलादि द्रव्यों का जो ज्ञान आदि अपने अपने भावों के द्वारा स्पर्श होता है वह भी दूसरा भाव स्पर्श है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यद्यपि सूत्र में केवल वो आगम वाला ही लिया है, प्रथम प्रकार के भाव स्पर्श का ही ग्रहण किया है, पर सूत्र को देशामर्शक मानकर उस के ऊपर रफार करो बराबर, यहाँ भाव स्पर्श के अन्य भेदों का भी विवेचन किया गया है। इस प्रकार भाव स्पर्श का कथन समाप्त हुआ, श के ऊपर रफा देना। अब यहाँ उन्होंने 13 निक्षेप के जो बताए प्रकार अलग अलग, अब कहते यहाँ किसको लेना है ए देशिम फासानम केन फासेन पयदम, कहते कम्म फासेन पयदम, इन स्पर्शों में से प्रकृत में कौन स्पर्श लिया गया है यानी हमें किसकी बात करनी है, तो प्रकृत में कर्म स्पर्श लिया गया है, यानी कर्म का कर्म के साथ जो देखा था हमने उसके जो 64 भंग करके दिखाए थे, तो कहते वो यहाँ कर्म स्पर्श लिया है। अध्यात्म को विषय करने वाले इस खंड ग्रंथ की अपेक्षा, क्या कहा, इसको भी अध्यात्म कहा है, वो बस आत्मा आत्मा ऐसा नहीं है, तो आत्मा की जीव की बात है ये सब, इसी को अध्यात्म कहते हैं। यहाँ पर अध्यात्म को विषय करने वाले इस खंड ग्रंथ की अपेक्षा कर्म स्पर्श प्रकरण प्राप्त है, ऐसा यहाँ कहा है। महाकर्म प्रकृति प्रावृत में तो द्रव्य स्पर्श, सर्व स्पर्श और कर्म स्पर्श इन तीनों का प्रकरण है, यानी जो मूल जिसमें से ये डिराइव हुआ है शास्त्र महाकर्म प्रकृति प्रावृत, उसमें से ये सब भी अपने षटखंडागम की जो रचना वगैरह कहाँ से कौन सा खंड लिया है उसकी बहुत विस्तार से हमने चर्चा पहले भाग में की थी धवला के, तो कहते वहाँ तीनों प्रकार के जो स्पर्श उसको लिया है। शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है कि वहां पर सभी आए है ऐसा, उसका समाधान, दिगंतर शुद्धि में द्रव्य स्पर्श का कथन किए बिना वहां स्पर्श अनुयोग का महत्व नहीं बन सकता, इससे मालूम पड़ता है वहां द्रव्य स्पर्श, सर्व स्पर्श और कर्म स्पर्श इन तीनों से प्रयोजन है। ये दिगंतर शुद्धि में क्या लेना, और दिगंतर का तो दिशा ही होता है, अन्य दिशा की शुद्धि द्रव्य स्पर्श का कथन किए बिना उसमें दिगंतर शब्द नहीं डाला, हाँ दिवंतर का अर्थ होते जैसे दिगंबर शब्द कही जाता है, दिशा ही अंबर है, तो दिगंतर है ने, जैसे भाषांतर अन्य भाषा स्थानांतर, वैसे दिगंतर एक दिशा से दूसरी दिशा में। हाँ अभी आगे बढ़ते हैं। शंकाकार पूछते हैं यदि प्रकृत मैंने यहाँ पर कर्म स्पर्श से प्रयोजन है तो भूतबलि भगवान ने शेष 15 वो पंद्रह हुआ 15 अनुयोग द्वारों का अवलंबन लेकर उसका यहाँ कथन क्यों नहीं किया, क्या कहते हैं? शेष 15 अनुयोग द्वारे ने कर्म स्पर्श है इसे बता दिया, अभी कहते हो कर्म स्पर्श की बात बताइए तो 16 अनुयोग द्वार उसमें भी लगाने थे, निक्षेप नए वो फिर द्रव्य नहीं उसकी संख्या आ गई, टोटल सब कुछ बताना था तो उसका कथन क्यों नहीं किया? समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि स्पर्श संज्ञा वाले कर्म स्कंध का शेष अनुयोग द्वारों के द्वारा प्रतिपादन करने वाले वेदना अधिकार में कथन किया है। क्या कहते हैं? अभी जो हमने वेदना अधिकार पढ़ा रहे हैं, वेदना का अर्थ कर्म ही होता है, तो उसमें हमने 16 अनुयोग द्वार देखे थे, वेदना नाम, वेदना निक्षेप, वेदना द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, सभी बातें हमने देखी थी बहुत विस्तार से, उसका प्रमाण, भागा भाग, सन्निकर्ष वगैरह वगैरह। तो कहते वो हम अभी देखे ही आए, यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पुस्तकों में सब विस्तार से देखा है। यहाँ कहते हैं कि वेदना अधिकार में कथन किया है, उसके सिवाय और कोई विशेष नहीं है। जो वेदना में बताया कर्म के बारे में वही बात है कर्म स्पर्श में, और कोई अन्य तो है ही नहीं, ऐसा समझकर यहाँ उसका कथन नहीं किया है। शंका, यदि ऐसा है तो सर्व स्पर्श और द्रव्य स्पर्श तो अपुनरुक्त थे, उनका यहाँ कथन क्यों नहीं किया? एक कर्म स्पर्श तो हो गया वेदना में, पर सर्व स्पर्श और द्रव्य स्पर्श तो बताना चाहिए था। समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ अध्यात्म विद्या का प्रकरण है, क्योंकि सर्व स्पर्श द्रव्य स्पर्श तो लौकिक बातें हैं, किसका किसके साथ स्पर्श हो रहा है क्या है, तो कहते उसकी यहाँ कोई प्रयोजन ही नहीं है, है ना? तो यहाँ अध्यात्म विद्या का प्रकरण है, इसलिए अनेक नयों की विषयभूत अनध्यात्म विद्या का प्रकृत में कथन करना नहीं बन सकता, अनध्यात्म विद्या का यहाँ कोई विशेष बात नहीं बताएंगे। क्या कहते हैं? देखो विशेषार्थ में यहाँ स्पर्श निक्षेप, क्ष को मात्रा देना, स्पर्श निक्षेप 13 प्रकार का है, 13 प्रकार का कहा है, उनमें से प्रकृत में कर्म स्पर्श लिया गया है। प्रश्न यह है कि यदि प्रकृत में कर्म स्पर्श लिया गया है तो इसका नाम कर्म के सिवाय शेष कर्म ने विभाषणता व कर्म नाम विधान आदि 15 अनुयोग द्वारों के द्वारा अवश्य कथन करना था, यानी उसका नाम तो बता दिया उसका कर्म स्पर्श, अभी अन्य जो 15 अनुयोग द्वार है उसका यहाँ कथन बनता था तो करना था। तो कहते समाधान यह है कि पहले वेदना अनुयोग द्वार में वेदना शब्द से कर्म का ही ग्रहण किया गया है। अब जो पुराने पुस्तकों में नेक्स्ट पेज पर जो नया अनुयोग द्वार है उसका जो पहला पूरा पैराग्राफ है वो इसी के कंटिन्यूएशन में है। आप में क्या नई पुस्तक में कैसा छपा है आपके? हाँ अभी कंटिन्यूएशन में लेना है, इसलिए यानी ये जो अभी हमने कर्म का ही ग्रहण किया है इसलिए वहाँ इसका विवेचन हो चुका है, अतः पुनः इसके विवेचन करना उचित न जानकर यहाँ उसका कथन नहीं किया है। प्रसंग से एक प्रश्न यह भी किया गया है जब इस अधिकार में स्पर्श की मुख्यता है तो सर्व स्पर्श और द्रव्य स्पर्श जो अपुनरुक्त है, कर्म स्पर्श तो पुनरुक्त है पर ये दो तो अपुनरुक्त थे उनका कथन क्यों नहीं किया, और जिनका अन्यत्र कथन नहीं किया गया है उनका यहाँ अवश्य कथन करना था। इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामी ने जो कुछ भी कहा है वह मार्मिक है, उनका कहना है यह अध्यात्म शास्त्र है। किसको कहा? आगम ये जो है जिसको कहें षटखंडागम है उसको अध्यात्म शास्त्र कहा है, इसलिए इसमें अन्य विषयों के कथन को विशेष अवकाश नहीं, लौकिक चीजों की बात यहाँ नहीं बताएंगे। अध्यात्म शास्त्र का अर्थ है आत्मा की विविध अवस्थाओं और उनके मुख्य निमित्तों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र। यह अध्यात्म शास्त्र है और अध्यात्म का अर्थ क्या क्या, आत्मा की विविध अवस्थाओं और उनके मुख्य निमित्तों का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र, यानी जो जीव कांड भी है, कर्म कांड भी है, जो कोई लब्धि सार जो कुछ है, ये सब क्या होते हैं, अध्यात्म शास्त्र कहलाते। लोगों को लगता है इसका क्या प्रयोजन है, ये बेकार की बात है, और इसको अध्यात्म शास्त्र कहा है यहाँ पर, है ना। देखो अध्यात्म शास्त्र का अर्थ है आत्मा की विविध अवस्थाओं और उनके मुख्य निमित्तों का प्रतिपादन करने वाले, यानी कर्मों की बात मुख्य निमित्त में आ जाती है और आत्मा की अवस्था जो गुणस्थान है मार्गणा है वो सब इसमें आ जाएगी, यह उसका व्यापक अर्थ है। वैसे जीव की विविध अवस्थाओं में मूल वस्तु का ज्ञान कराने वाले शास्त्र ही अध्यात्म शास्त्र कहलाता है, परंतु कार्य कारण भाव की दृष्टि से विचार करने पर उन विविध अवस्थाओं और उनके मूल निमित्तों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का भी इसमें अंतर्भाव हो जाता है। क्या कहना है, पहले मूल वस्तु यानी जो हम स्वभाव भाव कहेंगे जिसका अनुभव करना है अध्यात्म शास्त्र में, तो समय सारादि में जिसमें जो आत्मा की बात है, छोद्रव्यों की बात छोड़कर आत्मा की मुख्यता से बात करते हैं, परंतु यहाँ कहते हैं कि कारण और कार्य भाव की विचार करने पर विविध अवस्थाएं जो किसकी, आत्मा की विविध अवस्थाएं और उसके जो मूल निमित्त है उसके प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का भी इसमें यानी अध्यात्म में अंतर्भाव हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर जो वो जा हुआ जो 14 मार्गणाओं में से प्रारंभ की 4 मार्गणाओं को द्रव्य मार्गणाएं कहते हैं। कौन सी 4
मार्गणाएं?
हाँ, तो वे सिद्धांत ग्रंथों के अभिप्राय और उनकी वर्णन शैली से अनभिज्ञ है। क्या कहा, जो उसको कहते हैं ये बेकार की बात है, ये तो इसके कोई अध्यात्म में कोई आवश्यकता नहीं कहने वालों को कहते, वो सिद्धांत ग्रंथों की शैली उन्हें पता नहीं है, वो अनभिज्ञ है, यही कहना पड़ता है। सिद्धांत ग्रंथों में भाव मार्गणाओं का ही विवेचन किया गया है, यह बात खुद्दाबंध के 14 मार्गणाओं का विवेचन करने वाले सूत्रों से भी स्पष्ट जानी जाती है। ये खुद्दाबंध हमारी कौन सी पुस्तक थी, सातवीं थी, यानी इसको सो भाव मार्गणा ही कहेंगे सबको। यही कारण है यहाँ 13 प्रकार के स्पर्शों का स्वरूप कह करके उनका विशेष व्याख्यान नहीं किया है, क्योंकि सर्वस्पर्श और द्रव्य स्पर्श ये तो लौकिक बात है, उसका यहाँ प्रयोजन नहीं है। अध्यात्म ये कर्मों का उसमें प्रयोजन है, इसलिए उसको बताया है। इस प्रकार स्पर्श निक्षेप का कथन समाप्त होने पर, यहाँ तो नए निक्षेप की बात बताइए और बाकी तो अनियोग द्वार नहीं बताया, क्योंकि उसमें हमें कर्म स्पर्श का ही प्रयोजन है, वो वेदना में आ गए। स्पर्श अनियोग द्वार का कथन समाप्त हुआ, देखो यहाँ अनियोग यहाँ समाप्त होता है और इसके बाद ऊपर जो लिखा है ना हेडिंग इस पेज पर कम्मानुयोग द्वारम, यानी कर्म अनियोग द्वार यहाँ से प्रारंभ होता है। स्पर्श अनुयोग द्वार समाप्त हुआ है और कर्म अनुयोग द्वार शुरू हुआ है। कर्म स्पर्श की बात नहीं है, कर्म स्पर्श स्पर्श वाला एक भेद था और यहाँ कर्म अनुयोग द्वार यहाँ से शुरू हो जाता है। देखो जरा निकालो विषय परिचय निकालो, पहला पॉइंट पेज विषय परिचय का स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है ना, पहला विषय परिचय देखो। स्पर्श अनुयोग द्वार से वर्गणा खंड प्रारंभ होता है, हमने देखा था वर्गणा खंड यहाँ से शुरू हुआ है। पहला तो वेदना खंड था, ये पांचवा वर्गणा खंड है। इसमें स्पर्श कर्म और प्रकृति इन तीन अधिकारों के साथ, यानी वो स्पर्श वाला अनुयोग उसका जो अनुयोग द्वार यहाँ समाप्त हुआ, फिर कर्म और फिर प्रकृति, इन तीन अधिकारों के साथ बंधन अनुयोग द्वार के मंदर बंधनीय इन दो अधिकारों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। यानी जो हमने देखा था जो महाकर्म प्रकृति प्रावृत में से वो कहाँ से ये निकला है विषय, उसकी चर्चा की थी, उसकी बात यहाँ पर। फिर भी इसमें बंधनीय का आलम्बन लेकर वर्गणाखंड क्यों कहा, बंधनीय ने जो बंधने वाली बंधके योग्य है, वर्गणाओं का सविस्तर वर्णन किया गया है, इसलिए इसे वर्गणाखंड इस नाम से संबोधित करते। समझ में आई ना बात यहाँ पर? तो पहले में पहले स्पर्श कर्म प्रकृति कहकर फिर प्रकृतियों में वर्गणाओं की बात उठाएंगे। अब पेज नंबर इसी का विषय परिचय का चौथा पेज निकालो। क्या क्या आप चार पेज निकालो विषय परिचय का। हाँ, आपने कुछ अलग पेज बताया। तीस थर्ड पेज पे लास्ट में नहीं, हमारे में नए में होगा, नए में होगा। हाँ, वो पेज नंबर अलग होते हैं ना। कर्म अनुयोग द्वार जहाँ दो लिखा है ना, तो यहाँ कर्म में क्या आने वाली है बात, देखो हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं यहीं से, और यही विस्तार में आने वाला है, कुछ अलग से नहीं लिखा है इसके अंदर। तो कर्म अनुयोग द्वार में क्या क्या बातें हम पढ़ने वाले है उसको थोड़ा अंदाजा लेते हैं। कर्म है नहीं, वो आठ कर्मों की बात नहीं है, पहले में ये ले लो, नहीं है वो कर्म स्पर्श में आ गई, वो वेदना में आ गई। अभी कर्म है नहीं, यहाँ क्रियाओं की बात चलेगी, अभी पढ़ते ही जरा, इसलिए थोड़ा पहले इसका विषय परिचय अंदाज लेकर फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम कहेंगे कर्म स्पर्श भी कह रहे हैं, वेदना में भी हो गया, और क्या कर्म के बताएंगे। तो देखो, कर्म का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है क्रिया, कार्य के लिए भी कर्म कहते ना, वादा है कर्मण्ये वाधिकारस्य, यानी अपना कार्य करते रहो, वो बात यहाँ नहीं है। निक्षेप व्यवस्था के अनुसार, अभी इसके भी निक्षेप बनाएंगे, नाम स्थापना द्रव्य भाव वगैरह वगैरह लगा लेंगे इसमें। इसके नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म, नाम स्थापना द्रव्य तो हो गए, प्रयोग कर्म, समवदान कर्म, अधक कर्म, इरियापथ कर्म, तपक कर्म, क्रिया कर्म, भाव कर्म, ये दस भेद है। हमेशा हम चार में उसको विभाजित करते हैं उसमें, और अभी हमने स्पर्श में तो 13 बताए थे, यहाँ 10 बताए। साधारणता कर्म का कर्म निक्षेप, कर्म नय विभाषणता आदि 16 अनुयोग द्वारों का आलम्बन लेकर विचार किया जाता है। जैसे अभी हमने 16-16 देखे थे, वेदना में भी लगाए, स्पर्श में भी लगाए, वैसे यहाँ सर्वप्रथम कर्म निक्षेप के 10 भेद गिनाकर किस कर्म को कौन नए स्वीकार करता है यह बतलाया है। ऐसे ही जो हमने स्पर्श में पहले 13 नाम बताए, फिर उसके नए बताए, और कौन से नए को कौन सा स्वीकार है वो बताया। इसके बाद यानी ये विषय क्या आने वाला है यह अंदाजा हम यहाँ ले रहे हैं। प्रत्येक निक्षेप के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है, एक एक निक्षेप का वर्णन करेंगे, और फिर कौन सा निक्षेप हमें चाहिए, अभीष्ट है, इष्ट है, वो बताएंगे। तो कि नए के 5 भेद पहले लिख आए हैं, उनमें से नयगम नय, व्यवहार नय, संग्रह नय सब कर्मों को विषय करते हैं। ऋजु सूत्र ने स्थापना कर्म के सिवा शेष 9 कर्मों को स्वीकार करता है, तथा शब्द ने नाम कर्म और भाव कर्म को ही स्वीकार करता है, कारण स्पष्ट है। अब यो तो जो निक्षेप है वो तो लगा के बताएंगे। नाम कर्म और स्थापना कर्म सुगम है, जीव या अजीव का कर्म ऐसा नाम रखना नाम कर्म है। काष्ठ कर्म आदि में तदाकार या अतदाकार कर्म की स्थापना करना स्थापना कर्म है। कर्म ने वो क्रिया के अर्थ में ही लेना, ये सभी बातें बताएंगे। देखो, द्रव्य कर्म जिस द्रव्य की जो सद्भाव क्रिया है, उदाहरणार्थ ज्ञान दर्शन रूप से परिणमन करना जीव द्रव्य की सद्भाव क्रिया है, वर्ण गंध आदि रूप से परिणमन करना पुद्गल द्रव्य की सद्भाव क्रिया है, जीवों और पुद्गलों के गमनागमन में हेतु रूप से परिणमन करना अधर्म द्रव्य की सद्भाव क्रिया है, जो जिसका अपना अपना जो गुण है उसका जो कार्य होता है। सब द्रव्यों के परिणमन में हेतु होना काल द्रव्य की सद्भाव क्रिया है। ये गमनागमन में गमनागमन में इसमें अधर्म द्रव्य की लिखा है,
धर्म द्रव्य
धर्म अधर्म दोनों लेना चाहिए क्या?
दोनों दोनों चाहिए।
अच्छा अच्छा, हमारे वो वाक्य नहीं है,
क्या लिखा है?
देखो निकालो, हाँ हम डालेंगे। देखो हमारे में ये वाक्य है, जीव और पुद्गलों के गमनागमन में हेतु रूप परिणमन करना, यहाँ नहीं निकालना, एक पूरा वाक्य डालना है हमको। हमने अधर्म द्रव्य की क्रिया ही नहीं लिखी है ना, परिणमन करना धर्म द्रव्य की सद्भाव क्रिया, ये नीचे लिखो। यहाँ लिखा, देखो जीव और पुद्गलों के गमनागमन के हेतु रूप से परिणमन करना, यहाँ से वाक्य डालो, अतः बाद में उसके लिए दूसरा वाक्य जोड़ेंगे। अधर्म की बात रहने दो वहां पर, धर्म द्रव्य की सद्भाव क्रिया ऐसा लिखो। हाँ, अब इसके आगे फुल स्टॉप देकर वहीं पर और एडिशन करो। आपने क्या लिखा है? जीव और पुद्गलों, ठीक है, जीव और पुद्गलों के, लिखो, लिखने दो लोगों को, जीव और पुद्गलों के स्थित चित्तक होने के हेतु रूप से, स्थित होने के हेतु रूप से परिणमन करना, यानी निमित्त रूप से परिणमन करना। आगे अधर्म का नाम तो है हमारा ऊपर, वो तो है ना ऊपर, हमने उसके पहले ही एक्स्ट्रा डाला था वाक्य, अधर्म द्रव्य की सद्भाव क्रिया हमारे में छपा हुआ है। सब द्रव्यों के परिणमन में हेतु होना काल द्रव्य की सद्भाव क्रिया है, और अन्य द्रव्यों के अवकाश दान रूप से परिणमन करना आकाश द्रव्य की सद्भाव क्रिया है। इस प्रकार विवक्षित क्रिया रूप से द्रव्यों के परिणमन का जो स्वभाव है वह सब द्रव्य कर्म है, उसको कर्म यानी क्रिया का है। द्रव्यों की क्रिया वो द्रव्य कर्म लिखा, वो हमारा द्रव्य कर्म यानी आठ कर्म की बात यहाँ नहीं है। अब प्रयोग कर्म, मन प्रयोग वचन प्रयोग, मन प्रयोग कर्म वचन प्रयोग कर्म काय प्रयोग कर्म के भेद से प्रयोग कर्म तीन प्रकार का है। मन वचन और काय आलंबन है, इनके निमित्त से जो जीव का परिस्पंद होता है उसे प्रयोग कर्म कहते हैं। मन वचन काय की क्रिया के पन वो तो उसके उसका आलंबन लेकर जीव की प्रवृत्ति हो रही, जीव का जो परिस्पंद होता है। मन प्रयोग कर्म और वचन प्रयोग कर्म में से प्रत्येक सत्य असत्य उभय और अनुभय के भेद से चार प्रकार के, जो हमने योग में देखते हैं वैसे ये चार प्रकार है। काय प्रयोग कर्म, औदारिक शरीर काय प्रयोग कर्म आदि के भेद से सात प्रकार के, जो हमने काय योग बताते हैं सात प्रकार के, औदारिक औदारिक मिश्र वैकेक विक्रय मिश्र कारमाण सॉरी आहारक आहारक मिश्र और कारमाण, यह तीन प्रकार का प्रयोग कर्म यथासंभव संसारी जीवों के और सहयोगी जिनके होता है। अब समवदान कर्म, जीव आठ प्रकार के सात प्रकार के या छह प्रकार के कर्मों को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, इसलिए यह सब समवदान कर्म है। मनीषा बेन उत्तर देंगे, ये ऐसा क्यों लिखा आठ प्रकार के सात प्रकार के और छह प्रकार के, और समय दृष्टि आयु को नहीं ग्रहण करेगा, आयु नहीं बांधेगा, आप क्या कहते हैं? सात, आठ, सात और छह, इसका विभाजन हमको चाहिए। हाँ बताएंगे,
धीरेन भाई बताएंगे।
हाँ तेजल,
एक से सात गुण,
ये सब तैयार है। हाँ बोलो ब्रह्मा। देखो ऐसा कहो, जब आयु बनती है तो आठ कर्मों का ग्रहण होता है, उसमें सात के लिए ऐसा नहीं है, वो सात और आठ मिथ्या दृष्टि भी बांधेगा और अन्य भी बांधेंगे, है ना? और छह बोलो, छह कहाँ बंधे? दसवें में, दसवें में, दसवें में छह बनते हैं। जहाँ मोनी का बंद रुक गया है, अन्य छह बंद रहे। हाँ देखो देखो, तो गिनने कुछ नहीं, देखो गुणस्थान के हिसाब ने आयु के साथ आठ कर्म बनते हैं, अन्यथा सात कर्म बनते हैं और दसवें में छह कर्म बनते हैं, इसलिए यह सब समवदान कर्म है। अपन पहले में, पहले गुणस्थान में भी सात बनते ही है ना,
पहले से
आठ कभी कभी बनते हैं जब आयु बन रहा है, इस तरह से लेना है। अब ऐसे एक ही गुणस्थान में लेना है तो फिर तीसरे में सात ही बनते हैं, एक एक गुणस्थान का कर्तन अलग करना पड़ेगा, इसलिए आयु बनती है जिसको और जब उसके आठ, नहीं तो सात और दसवें में छह। समवदान का अर्थ विभाग करना है। जीव मिथ्या तो असंयम कषाय और योग के निमित्त से, ये उसके निमित्त बताए, हेतु जिसको प्रत्यय भी कहते हैं, कर्मों को ज्ञानावरणादि रूप से आठ सात या छह भेद करके ग्रहण करता है, इसलिए इसे समवदान कर्म कहते हैं। उसका विभाजन होता है, एक समय प्रबद्ध जो लिया वो आठ में विभाजित होगा या सात में या छह में, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब अधक कर्म किसको कहेंगे? जीव अंग छेदन, परिताप और आरंभ आदि नाना कार्य करता है, उसमें भी ये कार्य औदारिक शरीर के निमित्त से होते हैं, इसलिए उसकी अधक कर्म संज्ञा है। यद्यपि नारकियों के वैक्रिय शरीर के द्वारा भी ये कार्य देखे जाते हैं, पर वहां इनका फल जीव वधन नहीं दिखाई देता, इसलिए औदारिक शरीर की ही यह संज्ञा है। वो तो बात बताएंगे जब विस्तार करेंगे, जब हम वहां पढ़ेंगे। ईर्यापथ कर्म, ईर्या अर्थात केवल योग के निमित्त से जो कर्म होता है वह ईर्यापथ कर्म कहलाता है। यह ग्यारहवें से लेकर तेरहवें गुणस्थान तक होता है, क्योंकि केवल योग इन्हीं गुणस्थानों में उपलब्ध है, मात्र योग है, कषाय नहीं है। पहले तो मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग सब लिए थे, अब यहाँ मात्र योग लिया। यहाँ वीरसेन स्वामी ने तीन पुरानी गाथाओं को उद्धृत कर ईर्यापथ कर्म का अति सुंदर विवेचन करते हुए लिखा है, ईर्यापथ कर्म अल्प है, क्योंकि इसके द्वारा गृहित कर्म अल्प अर्थात एक समय तक ही रुकते हैं। वह बादर है, क्योंकि इसके द्वारा गृहित कर्म पुद्गल बहुत होते हैं। यहाँ यह कथन वेदनीय कर्म की मुख्यता से है, क्योंकि सारा समय प्रबद्ध एक साथ वेदनीय का है। वह मृदु है, क्योंकि इसके द्वारा गृहित कर्म कर्कश आदि गुणों से रहित होते हैं। वह वृक्ष है, क्योंकि इसके द्वारा गृहित कर्म वृक्ष गुणयुक्त होते हैं। अच्छा, वह शुक्ल है, क्योंकि इसके द्वारा गृहित कर्म अन्य वर्ण से रहित एकमात्र शुक्ल रूप को लिए हुए होते हैं। वह मंद्र है, क्योंकि वह सातारूप परिणाम को लिए हुए होता है। मंद कहना के मंद्र कहना है। वह महाव्यय वाला है, क्योंकि यहाँ असंख्यात गुणी निर्जरा देखी जाती है। वह सातारूप है, क्योंकि वहाँ भूख प्यास आदि की बाधा नहीं देखी जाती है। वह गृहित होकर भी अगृहित है, बद्ध होकर भी अबद्ध है, स्पृष्ट होकर भी अस्पृष्ट है, उदित होकर भी अनुदित है, वेदित होकर भी अवेदित है, निर्जर वाला होकर भी एक साथ निर्जर वाला नहीं है, और उदीरित होकर भी अनुदीरित है। कारण का निर्देश वीरसेन स्वामी ने किया ही है, वहां से ही पढ़ने योग्य है, बाकी चर्चा कल देखेंगे। इसको पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ यहीं से चालू करेंगे, और वहां अपने जगह पर भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हुनु।